एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पिछली लगभग आधी सदी में दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला है, HIV/AIDS।
हाँ बिल्कुल।
और इसे समझने के लिए हम एलन व्हाइटसाइड की एक बहुत ही अहम किताब HIV/AIDS अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसके जरूरी विचारों को आज खंगालेंगे।
बिल्कुल। और ये किताब मतलब आज भी उतनी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि HIV/AIDS सिर्फ एक बीमारी या कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा वैश्विक संकट रहा है जिसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी बहुत गहरे हैं।
सही कहा।
इसने न सिर्फ लाखों जाने ली बल्कि समाजों को बदला, स्वास्थ्य नीतियों को एक नई दिशा दी और मानवाधिकारों की जो लड़ाई है उसको भी तेज किया।
बिल्कुल। और किताब का शायद सबसे बड़ा आइडिया यही है ना, कि इस महामारी को सही मायने में समझने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि वायरस कैसे काम करता है।
हाँ, उससे आगे देखना होगा।
उससे आगे देखना होगा, हमें उन सामाजिक कमजोरियों को समझना होगा, जैसे गरीबी, असमानता, लिंग भेद, कलंक, जिनका कह सकते हैं फायदा उठाकर ये वायरस इतनी तेजी से फैला।
सही।
तो चलिए आज इसी की पढ़ते खोलते हैं।
हाँ।
तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानना दिलचस्प होगा।
एलन व्हाइटसाइड।
हाँ बिल्कुल। देखिए, वो कोई डॉक्टर या वायरोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि एक जाने माने स्वास्थ्य अर्थशास्त्री हैं, हेल्थ इकोनॉमिस्ट, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है मेरे ख्याल से।
हाँ।
और ये बात उनके नज़रिए को एकदम अलग बनाती है। वो दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलू नटाल में स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और HIV/AIDS अनुसंधान प्रभाग, जिसे HEAD कहते हैं, उसके संस्थापक निदेशक रहे हैं।
और ये वो इलाका है जो इस महामारी के एपिसेंटर जैसा रहा है, मतलब सबसे बुरे दौर से गुजरा है।
तो उनका काम सिर्फ किताबी नहीं, जमीनी हकीकत से जुड़ा है।
बिल्कुल। उन्होंने दशकों तक मतलब जमीनी स्तर पर शोध किया है और सरकारों को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, जैसे UNAIDS जो एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है, या विश्व बैंक, इनको सलाह भी दी है। उनका फोकस इस पर नहीं है कि वायरस शरीर में क्या करता है, बल्कि इस पर है कि ये महामारी ये समाज के ताने बाने पर क्या असर डालती है।
अच्छा।
वो सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते, बल्कि क्यों हुआ और इससे क्या फर्क पड़ा ये समझाते हैं।
तो ये किताब असल में है क्या? क्या ये कोई मेडिकल टेक्स्ट बुक है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम पाठकों के लिए HIV/AIDS महामारी का एक छोटा लेकिन बहुत ही दमदार परिचय है। इसे मेडिकल टेक्स्ट बुक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।
अच्छा।
ये कई विषयों का संगम है। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य है, विकास का अर्थशास्त्र है, सामाजिक न्याय है, सब कुछ शामिल है इसमें।
तो ये किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है।
हाँ बिल्कुल। शुरुआत होती है वायरस के विज्ञान से, मतलब आसान भाषा में कि HIV क्या है, ये कैसे काम करता है। फिर ये इतिहास में जाती है, कैसे ये वायरस शायद बंदरों से इंसानों में आया, कैसे 20वीं सदी में ये चुपचाप फैलता रहा और फिर 1981 में आखिरकार इसकी पहचान हुई।
और इसके बाद?
इसके बाद किताब बताती है कि ये दुनिया भर में कैसे फैली और क्यों कुछ इलाके, खासकर उप सहारा अफ्रीका, इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुए।
और यहीं पर किताब का वो मुख्य तर्क आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
बिल्कुल। कि फैलाव का जो पैटर्न था वो पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक हालात से बहुत गहरे से जुड़ा था।
अच्छा। फिर इसके असर का भी जिक्र होगा।
हाँ, फिर आता है इसके असर का पूरा ब्यौरा, कैसे जीवन प्रत्याशा गिरी, लाखों बच्चे अनाथ हुए, कैसे काम करने वाली पूरी पीढ़ी तबाह हुई, स्वास्थ्य सिस्टम कैसे चरमरा गए।
बापरे।
व्हाइटसाइड दिखाते हैं कि कैसे एड्स सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं रहा बल्कि एक विकास का संकट बन गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है। किताब वैश्विक प्रतिक्रिया पर भी रोशनी डालती है।
Yes.
जैसे एंटी रेट्रोवायरल दवाएं ART कैसे आई।
हाँ, वो दवाएं तो बहुत बड़ा बदलाव थी।
बिल्कुल। और मरीजों की जो जबरदस्त आंदोलन हुए वो भी, और फिर बड़े पैमाने पर जो वैश्विक फंडिंग आई, जैसे PEPFAR।
हाँ, PEPFAR का नाम सुना है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का एड्स राहत प्लान था।
जी। और द ग्लोबल फंड जो एड्स, TB और मलेरिया से लड़ने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इन सब पर भी बात है।
और अंत में?
अंत में किताब भविष्य की ओर देखती है कि अब क्या चुनौतियां बाकी हैं और आगे क्या उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर ये HIV/AIDS का एक पूरा, कह सकते हैं, 360 डिग्री नजरिया पेश करती है।
चलिए, तो आप थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये HIV है क्या चीज, मतलब बिल्कुल बेसिक स्तर पर?
देखिए, HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक रेट्रोवायरस है, मतलब एक खास किस्म का वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उस पर हमला करता है,
और खास तौर पर CD4 सेल्स पर, है ना?
बिल्कुल, जिन्हें इम्यून सिस्टम का कमांडर भी कहते हैं।
बिल्कुल, ये धीरे धीरे इन CD4 सेल्स को खत्म करता जाता है। इससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि शरीर आम संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता,
जिन्हें अवसरवादी संक्रमण कहते हैं, opportunistic infections।
हाँ, वही। और एड्स यानी acquired immunodeficiency syndrome, ये HIV संक्रमण की सबसे एडवांस स्टेज है, जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है।
और ये जानना जरूरी है कि लोग एड्स से नहीं मरते।
सही कहा, लोग एड्स के साथ होने वाले दूसरे संक्रमणों से मरते हैं जिनसे उनका कमजोर इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाता।
अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये वायरस आया कहाँ से? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वायरस, जिसे SIV यानी सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, वो अफ्रीकी बंदरों से, खासकर चिंपैंजी और सूटी मंकी भी से इंसानों में आया।
बंदरों से इंसानों में कैसे?
शायद 20वीं सदी की शुरुआत में शिकार के जरिए, जब शिकारी संक्रमित जानवर के खून के संपर्क में आए होंगे।
अच्छा, और फिर ये दशकों तक चुपचाप फैलता रहा?
हाँ, दशकों तक ये वायरस इंसानों में लगभग बिना किसी पहचान के चुपचाप फैलता रहा।
और फिर 80 के दशक में अमेरिका में इसका पता चला।
हाँ, व्यापार मार्गों से, शहरीकरण के साथ, औपनिवेशिक काल की उथल पुथल के साथ ये फैलता गया। दुनिया को असल में इसका पता 1980 के दशक की शुरुआत में चला, जब अमेरिका में, खासकर समलैंगिक कोषों में, कुछ अजीब और गंभीर बीमारियां देखी गईं।
और शुरुआत में तो बहुत कलंक भी जुड़ा था इससे।
बहुत ज्यादा। इसे ग्रेड यानी गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी जैसे नाम दिए गए थे। भारी कलंक था।
ये फैलता कैसे है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे लेकर बहुत गलत फहमियां रही हैं, आज भी हैं शायद।
बिल्कुल, मुख्य रूप से चार तरीके हैं। पहला, असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, संक्रमित सुई साझा करना, खासकर जो लोग इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं उनमें। तीसरा, माँ से बच्चे को, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के वक्त या ब्रेस्ट फीडिंग से। और चौथा, संक्रमित खून चढ़ाने से। हालांकि अब ब्लड टेस्टिंग बहुत बेहतर हो गई है।
और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये कैसे नहीं फैलता।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। छूने से, गले मिलने से, साथ खाने पीने से, एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करने से या मच्छर के काटने से, इन सब से HIV नहीं फैलता।
इन मिथकों ने कलंक को बहुत बढ़ावा दिया है, है ना?
बिल्कुल, डर और गलत जानकारी ने बहुत नुकसान किया है।
अच्छा, तो दुनिया भर में इसका असर अलग अलग क्यों रहा, जैसे अमेरिका और यूरोप में अलग, अफ्रीका में अलग?
हाँ, वाइड साइड इस पर काफी जोर देते हैं। वो बताते हैं कि अमेरिका और यूरोप में ये पहले केंद्रित महामारी थी, मतलब कुछ खास समूहों में ज्यादा फैली, जैसे पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष, MSM, या इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले।
जबकि उपसहारा अफ्रीका में ये एक सामान्यीकृत महामारी बन गई।
हाँ, वहाँ ये आम आबादी में, खासकर विषमलैंगिक संबंधों के जरिए ज्यादा फैली।
तो सवाल उठता है कि अफ्रीका इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हुआ?
देखिए, व्हाइट साइड इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बताते, बल्कि कई मिले जुले कारण बताते हैं।
जैसे कि?
जैसे गरीबी, दूसरी यौन संचारित बीमारियों STIs का ज्यादा होना, जो HIV संक्रमण का खतरा बढ़ाती हैं, कुछ समाजों में एक ही समय में कई लोगों से यौन संबंध रखने का चलन होना, फिर काम के लिए लोगों का अपने परिवारों से दूर जाना, जिसे लेबर माइग्रेशन कहते हैं, और शायद सबसे अहम, महिलाओं की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति।
हाँ, जिससे उनके लिए सुरक्षित सेक्स पर बात करना या
हाँ या उसे अपनाना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक तरह की विस्फोटक स्थिति बना देते हैं।
और इसका प्रभाव, व्हाइट साइड की विशेषज्ञता इसी में है ना, सामाजिक और आर्थिक असर।
बिल्कुल, और वो विनाशकारी था। कई अफ्रीकी देशों में जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 से 30 साल घट गई।
बाप रे,
20-30 साल।
हाँ।
सोचिए, दशकों की जो तरक्की थी वो सब बेकार हो गई।
हाँ।
लाखों बच्चे अनाथ हो गए, पूरी की पूरी कामकाजी पीढ़ी, युवा लोग, वो खत्म होने लगे।
अर्थव्यवस्था पर तो भयानक असर पड़ा होगा।
बहुत ज्यादा। परिवारों पर इलाज का, फिर अंतिम संस्कार का बोझ।
हाँ।
कमाने वाले सदस्यों की मौत से गरीबी और बढ़ गई। कंपनियों को कर्मचारियों की कमी झेलनी पड़ी, उत्पादकता गिरी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो गईं।
और समाज पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर,
शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। शिक्षक बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे। बच्चों को, खासकर लड़कियों को, बीमार रिश्तेदारों की देखभाल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ रहा था। स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो बोझ कल्पना से परे था।
वो पहले से ही कमजोर थे कई जगह, और एड्स ने उन्हें लगभग तोड़ दिया।
और इन सबके ऊपर वो कलंक और भेदभाव। बिल्कुल, उसने लोगों को और ज्यादा अकेला कर दिया, टेस्ट कराने से रोका, इलाज लेने से रोका, रोकथाम के प्रयासों में बहुत बड़ी बाधा डाली।
लेकिन ये कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं है, जैसा आपने कहा वैश्विक प्रतिक्रिया भी हुई।
हाँ, और व्हाइट साइड इस पर भी काफी जोर देते हैं कि दुनिया ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इसमें विज्ञान का रोल तो मतलब कमाल का रहा है।
हाँ, वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, ये तो एक क्रांति से कम नहीं थे।
बिल्कुल, ये इलाज नहीं है, लेकिन ART दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है जो HIV वायरस को शरीर में दबा देता है, उसे बढ़ने से रोकता है। इससे इम्यून सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो पाता है और HIV के साथ जी रहे लोग एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। 1990 के दशक के मध्य में जो HAART यानी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आई, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था।
इसने HIV को एक तरह से मौत की सजा से एक मैनेज की जा सकने वाली पुरानी बीमारी बना दिया।
हाँ, कम से कम उनके लिए जो इसका खर्च उठा सकते थे या जिन्हें ये मिल सकती थी। लेकिन यहीं पर एक्टिविज्म यानी आंदोलनों का रोल आता है।
एक्ट अप जैसे समूह।
हाँ, एक्ट अप जैसे समूहों ने चुप्पी बराबर मौत, साइलेंस इक्वल्स डेथ का नारा दिया। उनके जोरदार प्रदर्शनों ने सरकारों पर, दवा कंपनियों पर जबरदस्त दबाव डाला।
क्या मांगे थी उनकी?
कि दवा परीक्षण तेज करो, कीमतें कम करो, मरीजों की सुनो। ये सिर्फ लैब में बनी दवाएं नहीं थी, लोगों की जिंदगी का सवाल था।
और ये एक्टिविज्म सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं था, है ना? दक्षिण अफ्रीका का जिक्र भी आता है।
बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में ट्रीटमेंट एक्शन कैंपेन टैक जैसे समूहों ने दवा कंपनियों के पेटेंट को चुनौती दी ताकि सस्ती जेनेरिक दवाएं मिल सकें।
अच्छा,
ये दुनिया भर में इलाज तक पहुंच की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने दिखाया कि आम लोग भी संगठित होकर बदलाव ला सकते हैं।
तो विज्ञान और एक्टिविज्म साथ साथ चले।
हाँ, और फिर धीरे धीरे वैश्विक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जागी। UNIS बना, फिर द ग्लोबल फंड और PEPFAR जैसी बड़ी पहलें शुरू हुईं।
हाँ, PEPFAR का जिक्र पहले भी आया था।
जी, इन्होंने विकासशील देशों में रोकथाम और इलाज के लिए अरबों डॉलर दिए, लाखों जाने बची इनकी वजह से। ये दिखाता है कि जब दुनिया मिलकर काम करती है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
तो आज स्थिति क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि लड़ाई जीत ली गई है?
व्हाइट साइड मानते हैं कि जबरदस्त प्रगति हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों लोग इलाज पर हैं, नए संक्रमण कम हुए हैं, माँ से बच्चे में संक्रमण काफी हद तक रोका जा सका है।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। और व्हाइट साइड आगाह करते हैं कि आत्मसंतोष सबसे बड़ा खतरा है।
मतलब ये सोचना कि अब सब ठीक हो गया है।
हाँ, ऐसा ना हो कि हम सोचें कि लड़ाई खत्म हो गई है। लगातार फंडिंग और राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और क्या चुनौतियाँ हैं?
दूसरी बड़ी चुनौती है हाशिए पर मौजूद समूहों तक पहुंचना, जैसे MSM, ट्रांसजेंडर लोग, सेक्स वर्कर, ड्रग यूजर, कैदी। इन समूहों को अक्सर कलंक, भेदभाव और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते। जब तक इन तक नहीं पहुंचेंगे, महामारी खत्म नहीं होगी।
और इलाज की नई रणनीतियां भी आई हैं, जैसे इलाज ही रोकथाम है।
हाँ, ट्रीटमेंट एज प्रिवेंशन, TAP, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभावी ART पर है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, यानी खून में वायरस की मात्रा बहुत कम है, तो वो यौन संबंध से वायरस नहीं फैला सकता।
अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। U=U?
हाँ, U=U, यानी undetectable=untransmittable। UNAIDS के जो 95-95-95 लक्ष्य हैं, वो इसी पर आधारित हैं।
वो क्या है लक्ष्य?
लक्ष्य ये है कि 2030 तक 95% संक्रमित लोग अपनी स्थिति जानें, उनमें से 95% इलाज पर हों और उनमें से 95% का वायरल लोड दबा हुआ हो।
ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं।
लेकिन जरूरी हैं। और हाँ, एक स्थायी इलाज यानी क्योर और एक प्रभावी वैक्सीन की खोज अभी भी जारी है। ये वैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल काम है, पर कोशिशें जारी हैं।
तो व्हाइट साइड का मुख्य संदेश क्या है भविष्य के लिए?
उनका संदेश साफ है, लड़ाई जारी रखनी होगी। और ये लड़ाई सिर्फ वायरस के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सामाजिक असमानताओं के खिलाफ भी है जो इसे पनपने का मौका देती हैं। हमें एक अधिकार आधारित और समान वैश्विक प्रयास की जरूरत है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली बात तो वही है जो हमने शुरू में कही थी कि HIV/AIDS सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये एक सामाजिक आर्थिक संकट है। इसने समाज की जो गहरी दरारें हैं, गरीबी, असमानता, उनको उजागर किया और उनका फायदा उठाया, भारत में भी हम देखते हैं कि कैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात है कलंक और इनकार की ताकत।
हाँ, वो बहुत विनाशकारी रही है। डर और गलत जानकारी ने शायद वायरस जितना ही नुकसान पहुंचाया।
सही कहा। इसने लोगों को टेस्ट कराने से, मदद लेने से, खुलकर बात करने से रोका। भारत में आज भी कई बीमारियों जैसे मानसिक स्वास्थ्य या यौन स्वास्थ्य से जुड़े कलंक मौजूद हैं, जिनसे हमें लड़ना है।
तीसरा, असमानता। ये इस महामारी का एक बड़ा कारण भी रही है और नतीजा भी।
किस तरह की असमानता?
हर तरह की। देशों के बीच की आर्थिक असमानता, समाज के अंदर की असमानता, लैंगिक असमानता। इसने सबसे ज्यादा गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और खासकर महिलाओं को प्रभावित किया। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच आज भी एक बड़ी चुनौती है।
चौथी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है विज्ञान और एक्टिविज्म का मिला जुला असर।
हाँ, वो कमाल का तालमेल था। ARTजैसी वैज्ञानिक खोजें जरूरी थीं, लेकिन ACTUP और TAC जैसे आंदोलनों का दबाव भी उतना ही जरूरी था।
उन्होंने बदलाव को जमीनी हकीकत बनाया।
बिल्कुल, उन्होंने उन दवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद की। ये हमें भारत में भी जन आंदोलनों की शक्ति की याद दिलाता है।
और आखिर में वो चेतावनी, आत्मसंतोष का खतरा।
हाँ, कि इलाज आ जाने का मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो गई। लगातार निगरानी, रोकथाम के प्रयास और फंडिंग जरूरी है।
किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आप कुछ साझा करना चाहेंगे?
हाँ, जैसे व्हाइट साइड एक जगह कहते हैं, जिसका सार ये है, HIV/AIDS सिर्फ एक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, ये गहरा विकास संकट है जिसने समाज की नींव पर हमला किया है।
मतलब इसने सिर्फ लोगों को बीमार नहीं किया बल्कि देशों की तरक्की को सालों पीछे धकेल दिया। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सब पर असर डाला।
बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण विचार है, एड्स प्रतिक्रिया का इतिहास दिखाता है कि जब विज्ञान, सक्रियता और राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलती है तो क्या हासिल किया जा सकता है।
ये सिर्फ वैज्ञानिकों की जीत नहीं थी, ये आम लोगों के संघर्ष की, सरकारों के साथ आने की भी कहानी है। एक मिलीजुली जीत।
हाँ, और ये बात भी बहुत चुभती है और सोचने पर मजबूर करती है। वायरस भेदभाव मिली करता, लेकिन समाज करते हैं। गरीबी, कलंक और असमानता HIV के फैलने के रास्ते बनाते हैं।
मतलब साफ है, वायरस किसी को भी हो सकता है, लेकिन कौन ज्यादा जोखिम में है और किसे वक्त पर सही इलाज और देखभाल मिलेगी, ये अक्सर सामाजिक हालात तय करते हैं।
बिल्कुल। वायरस तो बस एक जैविक चीज है, लेकिन महामारी का रूप समाज तय करता है।
और अंत में वो चेतावनी फिर से, आत्मसंतोष अब एड्स के खिलाफ लंबी लड़ाई में सबसे बड़े खतरों में से एक है।
यानी अगर हम ढीले पड़ गए ये सोचकर कि अब तो दवाएं हैं, तो सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। खतरा अभी टला नहीं है।
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? हम इसे कैसे देख सकते हैं?
मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर दो चीजें बहुत अहम है। पहला, सही जानकारी रखना और मिथक को दूर करना।
हाँ, ये जानना कि HIV कैसे फैलता है और कैसे नहीं।
बिल्कुल। इससे हम बेवजह के डर से बचते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में सही फैसले ले पाते हैं। दूसरा, और शायद उतना ही जरूरी, कलंक का मुकाबला करना।
वो कैसे?
HIV के साथ जी रहे लोगों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखना। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है तो उसे अकेला महसूस ना होने देना। खुली और बिना किसी जजमेंट के बातचीत को बढ़ावा देना।
और सामाजिक स्तर पर इसका क्या मतलब है?
ये किताब हमें स्वास्थ्य सेवाओं में बराबरी के महत्व की याद दिलाती है। ये पक्का करना कि हर किसी को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लिंग, जाति या यौन रुझान कुछ भी हो, रोकथाम, टेस्टिंग और इलाज की सुविधा मिले। हाशिए पर पड़े समूहों के मानवाधिकारों की रक्षा करना सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब लोग बिना डर या भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाएं ले पाते हैं, तभी पूरी कम्युनिटी सुरक्षित रहती है।
बिल्कुल। और ये वैश्विक सहयोग का महत्व भी दिखाता है ना? स्वास्थ्य संकट किसी देश की सीमा नहीं देखते।
हाँ, उनका सामना भी मिलकर ही करना होगा।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि कोई भी महामारी सिर्फ एक जैविक घटना नहीं होती, वो समाज का आईना होती है जिसमें वो फैलती है।
सही कहा।
हमारी कमजोरियां, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी असमानताएं सब सामने आ जाते हैं, लेकिन साथ ही हमारी सहानुभूति, हमारी एकजुटता और नई चीजें खोजने की हमारी क्षमता भी दिखती है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी इतनी मुश्किलों के बावजूद उम्मीद जगाती है। ये दिखाती है कि विज्ञान, एक्टिविज्म और वैश्विक एकजुटता मिलकर कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं,
बशर्ते
हम ईमानदारी से असमानता जैसे असली जड़ वाले कारणों पर ध्यान दें। लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं हुई हो पूरी तरह से, लेकिन हमने जो सीखा है वो भविष्य की किसी भी स्वास्थ्य चुनौती के लिए या शायद किसी भी सामाजिक चुनौती के लिए बहुत अनमोल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।